हमारे ऑन्टेरियो के, और एक आई है, इन्वेस्टिगेशन आई है या एक एलिगेशन आया है। उन्होंने अभी मेरा ख्याल आपसे कोई 10 मिनट पहले रिज़ाइन किया है। रिज़ाइन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि सिस्टम इज़ टोटली डिफरेंट।
नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना शोर मचाया गया है कनाडा ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो फिर सेंक्शन लगाए ना इंडिया पे, इंडिया को पनिश करें ना, कर सकते हैं।
सही।
अगर करेंगे देखेंगे, करेंगे तो देखेंगे कि जो है कैनेडियन सिस्टम बहुत अच्छा है। आई विल अप्रिशिएट दैट, लेट्स सी।
बिल्कुल सही। अच्छा सर, अब पाकिस्तान की तरफ अगर आ जाते हैं कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने टेक ओवर कर लिया है, और लाइव ऑन एयर गई है पूरी की पूरी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, क्या मिला जुला तासुर पाया जा रहा है? आईएसआई के इंचार्ज भी वहाँ पर मौजूद थे, डीजी आईएसआई वो भी इसमें मौजूद थे, मगर ये क्या ये थोड़ा हटके नहीं है? आज से पहले कभी भी किसी चीफ जस्टिस ने अगर ओथ लिया हो तो उसमें क्या आईएसआई के जो डीजी आईएसआई वो भी मौजूद हुआ करते थे?
जो होते हैं मौजूद, कोई इसमें ऐसा अनहोनी बात नहीं है।
अच्छा
और शायद वो यूनिफॉर्म में नहीं होते थे, ये यूनिफॉर्म में थे। और अभी अभी एक्सटेंशन भी हुई थी उसे 1-2 दिन पहले ही, तो एक मैसेज मेरा ख्याल है दिया गया है कि ही इज़ देयर। और साथ ये कि आर्मी चीफ का भी और DGISI का भी चीफ जस्टिस की ओथ टेकिंग पे मौजूदगी, वाज़े मौजूदगी, ये भी एक मैसेज था कि जुडिशरी और GHQ दोनों मिलके इस मुल्क को थोड़ा बेहतर करना चाह रहे हैं और दे आर ऑन वन पेज। अल्लाह करे ऐसा ही हो और अल्लाह करे कि ये मुल्क को कुछ बेहतरी दे सकें। बहरहाल एक मैसेज उन्होंने दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डॉलर के ख़िलाफ़ और जो ब्लैक मार्केटर हैं डॉलर को, जो कर लेते हैं, होल्डिंग कर लेते हैं और फिर उसको उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, उसकी प्राइस मैकेनिज्म को, उस पर काफ़ी यहाँ पे एक्शन हो रहा है पाकिस्तान में। रुपी स्टेबलाइज हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट और दूसरी फॉरेन करेंसीज में भी। तो मेरा ख्याल है एक वाज़े मैसेज देना बहुत ज़रूरी था इस मामले में, इसलिए शायद वहाँ सब मौजूद थे। और जहाँ तक उनकी लाइव ट्रांसमिशन की बात है, ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इस पर बहुत खुश और मुतमिन हूँ, और उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन पहले आपको ये बता दूँ कि जनरली अगर स्पीकिंग, आम लोग बहुत खुश हैं और सब लोग चाहते हैं कि ये सिलसिला बढ़े, कम ना हो। और तीसरी बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द जर्नलिस्ट कम्युनिटी, मीडिया कम्युनिटी, दे आर हैप्पी विद इट एज वेल। कुछ लोग हैं मीडिया में जो इस पे, जिन्होंने रिजर्वेशन शो की है अपनी, मुखालफत किसी ने नहीं की, रिजर्वेशन शो किए हैं, नेगेटिव कमेंट्स कुछ एक दो सियासी जमातों से जिनकी एफिलिएशन है उनकी तरफ से आए हैं कि शायद ये पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट होता तो उसके और बहुत सारे तरीके हैं, जो साकिब निसार साहब जाके पतीलियाँ खड़काया करते थे पागल खाने की किचन में, या किसी रेस्टोरेंट पे छापा मारते थे, या किसी हॉस्पिटल पे छापे मारते थे, वो पब्लिसिटी स्टंट होता है। या इफ्तिखार चौधरी साहब जो करते रहे, ये आवाम को ज़रूरत थी कि वो अपने जजेस के चेहरे देखती, फुल कोर्ट देखती क्या होता है, आईन के शिकों पे किस तरह बहस होती है, जजों की काबिलियत क्या है, उनकी अहलियत क्या है, वकीलों की अहलियत क्या है, वकीलों की काबिलियत क्या है। कैमरा, यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम कैमरा। रिपोर्टर जाते हैं ना, मैं रिपोर्टर हूँ ना, मैं जाऊँगा ना वहाँ पे, तो मैंने 6 घंटे की जो भी वहाँ कार्रवाई हुई है उसमें जो चीज़ें कुछ मुझे याद रह गई हैं, कुछ मैंने नोट्स लिख लिए हैं, कुछ मेरा अपना मन है किसी तरफ कि ये मैं इसको ज़रा ज़्यादा हाईलाइट कर दूंगा। एक इंसानी जिबिलत है ना, इसमें झूठ बोलने की तो कोई बात नहीं है। तो वो उसके मुताबिक मैं अपनी रिपोर्ट बनाऊंगा, फाइल करूंगा, झलकियाँ को लिखूंगा, हाईलाइट्स बनाऊंगा, तो अपने हिसाब से बनाऊंगा जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे पसंद आई। कैमरा ये नहीं करता, कैमरा गैर जानबदार है। कैमरा जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहा होता है एज इट इज़, सुनवा रहा होता है एज इट इज़, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड, प्योर ब्लैक एंड वाइट चीज़ें वो दिखा रहा होता है। तो उससे ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है, हुई है, और ये ट्रांसपेरेंसी पहला स्टेप है टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी। तो मैं इस पे बहुत खुश हूँ इस वजह से कि ट्रांसपेरेंसी होगी, इससे लोग सब खुद देखेंगे उनके जज क्या कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, अनसेंसर्ड उनके पास सारी चीज़ पहुँचेगी, अदालत की कार्रवाई, वकीलों की परफॉर्मेंस देखेंगे,
बहुत
इतने बड़े बड़े
जबरदस्त।
वकील हैं और इतने करोड़ों की फीस लेते हैं, دو منٹ سیدھے زبان سے ان سے بات نہیں ہو سکتی, نہ کوئی آئینی دلیل دے سکتے ہیں, لیکن ٹاؤٹ ہی کرتے ہیں, آدھے پیسے خود رکھتے ہیں, آدھے جج کو دیتے ہیں, اور یہاں ڈنڈورا مچ جاتا ہے, بڑا کامیاب وکیل ہے, بڑا کامیاب وکیل ہے, سارے کیس یہ تو جیت لیتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے پیچھے کہ مکمکا ہوا ہوتا ہے. اب کیمرے سے یہ نہیں ہو چھپ سکتا, تو شفافیت آئے گی اس سے.
بڑی کمال کی سر آپ نے بات بتائی ہے کہ وکیل فی سالہ لیتا ہے, آدھے پیسے خود رکھتا ہے, یہ تو نئی بات آج پتا چلی.
ایسے ہی ہے, یہ جتنے کامیاب وکیلوں کی اکثریت جو ہے نا, وہ یہی کام, وہ کیوں کامیاب ہیں, وہ بہت کوئی جینیس نہیں ہے, وہ کوئی لیگل کوئی نہیں ہے اتنے. آپ نے دیکھ لیا نا, اگر آپ نے وہ دیکھی ہے لائیو ٹرانسمیشن, آپ دیکھیں دو پاکستان کے سب سے بڑے وکیل ان کو لٹا دیا فلور پہ ججز نے پانچ پانچ منٹ میں,
مگر چیف جسٹس نے جناب ان کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ بھی دیا ججز کو, انہوں نے کہا وکیلوں سے کہ آپ سوال نوٹ کریں, جواب بعد میں دیجئے گا, کیری آن.
جی بالکل, کیونکہ وکیل پھر کہتے ہیں جی ہماری آپ وہ ججز پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہماری چین آف تھاٹ جو ہے وہ آپ بریک کر دیتے ہیں سوال پوچھ کے, تو پہلے ہمیں اپنی ایک آرگومنٹ کمپلیٹ کر لیں.
اور چیف جسٹس نے لوگوں نے, بلکہ وہ کہتے ہیں لوگ تو خدا سے بھی خوش نہیں ہیں, مگر مجھے لگتا ہے کہ ہی ول بی اے گریٹ مین. شاید مجھے جناب لودھی صاحب, خالد نعیم لودھی صاحب آئے تھے, انہوں نے تین سیناریوز کی تھی. تیسرا سیناریو یہ تھا کہ 3 سال تک اسی سسٹم کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے, تو ہم چیزوں کو نارملائز کر سکیں گے, یعنی سافٹ مارشل لا والا, یہی جو سسٹم اس وقت نظر آ رہا ہے.
ان سے کوئی آپ ڈیفنس اسٹریٹجی پہ, ملٹری اسٹریٹجی پہ بات کرتی, ان کو سیاست کا کیا پتا؟ جنرل تو سیاست کرتے نہیں, میں نے تو یہ سنا تھا. ان کو اتنی سیاست کی سمجھ کہاں سے آ گئی, اور کیوں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ 3 سال یہ سسٹم چلے گا, 4 سال یہ سسٹم چلے گا, کیوں؟ الیکشن ہونے چاہیے اس ملک میں جو بھی آئے.
ٹھیک سر, آپ نے بالکل صحیح کہا, میں تو بتا رہی ہوں کہ 3 سال الیکشن نہیں ہوتے.
اب آپ مجھ سے ملٹری اسٹریٹجی پہ اگر انٹرویو کا, میں بڑا
نہیں, میں آپ سے اگری کرتی ہوں سر, میں آپ سے اگری کرتا ہوں
آپ کو کہ انڈین فوج اتنی ہے اور ہماری فوج اتنی ہے.
میں سر بالکل اگری کرتی ہوں, میں بالکل آپ سے
کیا کہوں میں اب, میں
مگر نہیں, میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا, یہ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ بس مجھے ان سے ملٹری اسٹریٹجی کی بات ان کو مجھے بتانی چاہیے تھی. اچھا, مگر سر میں نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تو اس کا جواب نہیں دیا, بعد میں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ آپ نے اس کا جواب ہی نہیں تھا لیا. وہ میں فالس فلیگ کی بات کر رہی تھی کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا اور بہت ساری کانسپریسی تھیریز ہیں اس کے بارے میں, اور انڈیا آج تک جسٹیفائی نہیں کر سکا, ہم کو کبھی بھی کوئی بھی چیز پرووائڈ ہی نہیں کر سکا, جو کیا پاکستان نے ہمیشہ پروفز مانگے, دے کڈ نیور. مگر پاکستان کے پولیٹیشین اس وقت کے جب جاتے ہیں اور انڈیا میں جا کے اگر یہ کہہ دیتے ہیں او ہاں اجمل قصاب ہمارا, ہماری طرف سے ٹیررسٹ آتے ہیں, حالانکہ پاکستان تو ٹیررسٹ کا مارا ہوا ہے, بلوچستان ہمارا, وہ جو ایک ابھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو اتنا بڑا حاضر سروس ملازم تھا, تو کیسے ہمارے پولیٹیشین نے جا کے انڈیا میں یہ لفظ کہہ دیا, اینڈ اٹ از آن ریکارڈ آن سٹنگ آن یوٹیوب.
دیکھیں میں,
آپ کنڈیم تو کریں نا اس بات کو کہ اپنے ملک کو کور کرنا چاہیے تھا, ہمارے پولیٹیشین کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا.
میرے کنڈیم کرنے سے اگر انقلاب آ سکتا ہے تو میں کنڈیم کر دیتا ہوں.
آئی لو یو بیسٹ.
لیکن ایک بات میں آپس کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی اس پہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, ہمیں پہلے اس سوال کا جواب تلاش کر لینا چاہیے.
100% ضرورت ہے.
ضرورت ہے تو پھر ہمیں جھوٹ اپنے آپ سے نہیں بولنا چاہیے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں, انڈیا بھی کرتا ہے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
سر آج تک جتنے ٹیررسٹ اٹیک پاکستان میں ہوئے, کیا پاکستان کیوں اس کو رجسٹر نہیں کر سکتا؟ آئے دن پشاور میں آپ کا بندے مرے ہوتے ہیں, فوجی مرے ہوتے ہیں.
ہم لائق ہیں, ہماری معیشت کمزور ہے, ہمارے یہاں سٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارے یہاں کسی حکومت کو دوام ہی نہیں ہے.
مگر سر وہ جو ٹیررسٹ ہیں وہ تو پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے نا, بلوچستان کو سیپریٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو 4 حصوں میں توڑنے کے لیے ٹیررسٹ آتے ہیں نا.
دنیا جو ہمارا دشمن ہے, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ ہمارے لیے حلوہ بنا کے صبح صبح لے کے آئے؟
میں تو یہ میری جان, آج کتنے پاس گئے, آج مجھے لگتا میں نے بھی کوئی بری چیز کھا لی, آپ نے بھی کوئی. مگر میرا تو سوال یہی ہے نا, دیکھیں میں تو اپنا غم کا اظہار آپ سے کرتی ہوں. ہمارے پولیٹیشینس نے نریندر مودی کو, جندل کو اور ارلے پرلوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں یہ لفظ کہا کہ ہاں ٹیررسٹ پاکستان سے آتے ہیں؟ آتے ہوں گے مگر پاکستان ظاہر ہے یہ تو ایجنسیاں موساد کی ابھی آپ نے بات کی ہے، را کی ابھی آپ نے بات کی ہے، آئی ایس آئی کے بھی اپنے کام دنیا میں کراتی ہوگی، پاکستان نہیں دنیا کہتی ہے ون آف دا بیسٹ۔
میں آپ کو بتایا نا جب آپ اپنے انویسٹیگیشن کی بات کر رہی ہیں نا کہ ہردیپ سنگھ پہ جو اس کا قتل ہوا اس پہ انویسٹیگیشن کینیڈا نے کی اور اس کی بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں، اجمل قصاب کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے، جو مرضی کر لیں، دنیا دیکھتی ہے نا، امریکہ اس میں انوالو تھا، امریکی شہری وہاں پہ مارے گئے تھے، کینیڈین شہری بھی شاید کو مارا گیا تھا، تو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا۔ اور اس میں دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ دونوں سائڈ یہ کرتی ہیں
سر، اجمل قصاب
سن لیں میری بات، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے لگا، مجھے ایک بات کسی نے تانے کے طور پہ کہی تھی، آپ اس لیے میرے ذہن میں تب سے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ مطلب کھل کے جب بات ڈرائنگ روم میں ہو رہی ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا آپ، ہم نے وہاں پہ وہ کروایا، ممبئی کروایا، اور آپ کے اتنے آپ کی ایفیشنسی یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا اجمل قصاب پکڑ لیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اور ہم کچھ نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنے بندے بھیجے یہاں پہ سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں حملہ کروایا اور پاکستان سے انٹرنیشنل سپورٹس کا خاتمہ کروا دیا، ان کا کوئی بندہ نہیں پکڑا گیا۔ اب یہ جب آپ اس طرح دیکھتے ہیں نا ٹیٹ فار ٹیٹ، تو پھر چیزیں اور طرح ہوتی ہیں، اور ہم نے کل بھوشن یادو کو پکڑا، ہم نے کیا کیا، ابھی نندن کو پکڑا ہمیں اگلے دن چھوڑنا پڑا، کل بھوشن یادو کو پکڑ کے ہم نے کیا کر لیا، دنیا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچا آپ نے کبھی کہ دنیا کل بھوشن یادو سے بڑی کوئی ایگزامپل ہو سکتی ہے؟ وہ ہم کیوں نہیں اس کو کیش کر سکے، ہم اس پہ کیوں نہیں اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر سکے؟ دنیا ہماری بات ہی نہیں سنتی، دنیا پہ اعتبار ہی نہیں کرتی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو اپنی حکومت پہ، اپنے حکومت چھوڑ دیں، آپ کو اپنے پاکستان کے نظام پہ اعتبار ہے؟
اب فوج آ جائے گی تو میرا خیال ہے شاید تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے۔
نہیں نہیں، یہ آپ کا خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے۔ یہ
میرا دل کرتا ہے میں فوج کو پروموٹ کرنا شروع کر دوں، کہ مجھے لگتا ہے جیسے شاید ٹھیک ہو جائے حالات،
میرا دل کرتا ہے میں کینیڈین آرمی چیف کو پروموٹ کروں اور وہاں کی فورسز کو پاؤں۔
اچھا، کیونکہ میں نا میں سوری میں تھوڑی سی نان سیریس ہو گئی، میں ابھی نا پاکستان کے عامر، میں نے آپ کو بھی بھیجا ہے، ابھی میں سر دیکھ رہی تھی، اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ پی ڈی ایم بن گئی، اس لیے بن گئی کہ پی ٹی آئی آ گئی تھی، مگر سر میں جب یہ دیکھ رہی تھی ذوالفقار علی بھٹو، آپ 77 میں آتے ہیں، یعنی 73 میں آپ آتے ہیں، ذوالفقار 14 اگست 1973 میں آپ آتے ہیں پاور میں، اس کے بعد محمد خان جنیجو آ جاتے ہیں، پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ آ جاتی ہیں 1988 میں۔ اب آپ امیجن کریں، لک ایٹ دس سسٹم، 88 میں، 73 میں وہ آتے ہیں، جنیجو صاحب مسلم لیگ کے ساتھ آ جاتے ہیں، دیٹ از 29 مئی 1985 میں، اس کے بعد محترمہ بے نظیر آ جاتی ہیں 2 دسمبر 1988 میں، اس کے بعد جناب نواز شریف آ جاتے ہیں 6 نومبر 1990 میں، جو لوگ سین دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پھر بے نظیر صاحبہ، یعنی نواز شریف بے نظیر پھر آ جاتی ہیں 19 اکتوبر 1993 میں، اور 17 فروری 1997 میں نواز شریف صاحب پھر آ جاتے ہیں، ظفر اللہ جمالی صاحب آ جاتے ہیں یہاں پہ آ کے، پھر یہ وہ ایک دور آ جاتا ہے جو مشرف صاحب کا آ جاتا ہے، جس میں تین مختلف لوگ، ظفر اللہ جمالی آ جاتے ہیں، چودھری شجاعت حسن آ جاتے ہیں، شوکت عزیز امپورٹڈ آ جاتے ہیں، اب آ جاتی ہے پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی میں صدر وہی رہتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کو پھر ریپلیس کرتے ہیں جناب نواز شریف۔ آپ امیجن کریں کہ 73 سے لے کے کھیل کتنا چل رہا ہے، 2013 تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہی چلتا چلا جا رہا ہے۔
تو ظاہر تو جو ٹو پارٹیز،
آئی شو یو دا پکچرز،
میں آپ کو پکچر، آپ پوری نہیں دکھائی نا، میں پوری پکچر دکھاتا ہوں آپ کو، آپ دیکھیے گا، میرے پاس تو اس وقت، آپ جتنا ٹیکی نہیں ہوں میں، نہ میرے پاس وہ ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں کہ میں آپ کو پوری پکچر، لیکن میں الفاظ سے پکچر پینٹ کروں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پوری پکچر ایسی خوفناک تھی۔ دیکھیں آپ اس کو دو ادوار میں تقسیم کر لیں، 1947 से आप लेके 1971 तक, जब पूरा पाकिस्तान था, 1971 से लेके बाद में आधा पाकिस्तान जो था, आपने इसमें सारी चीजें गिनवा दी हैं, नवाज शरीफ, बेनजीर और दो पार्टी
से ऑनवर्ड। आपको मैंने 73 से ऑनवर्ड लेके आई हूँ, मैंने 73 से पहले का दिखाया ही नहीं है।
मैं आता हूँ उधर, याद नहीं, वो जरूरी है, वो जरूरी है, पिक्चर तभी बुरी होगी। अब उसमें दो पार्टी सिस्टम है तो यही होता है, कनाडा में भी अगर टू पार्टी सिस्टम है तो ऐसे ही होगा कि एक जाएगी दूसरी आएगी, दूसरी आएगी एक आएगी। खैर इन्होंने इनमें से किसी ने भी, चले मैं वो बाद में आपको बात बता दूँ, जो पहला पार्ट था पाकिस्तान 1947 से 1971 तक, ये बनते हैं तकरीबन 35 साल।
जी जी
35 साल बनते, 34-35 साल बनते हैं, ठीक है। अयूब खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना 1951 में, जनवरी 1951, 1951। और जब पाकिस्तान टूटा 1971, 20 साल अयूब खान और उसके बाद जैया खान, ये 20 साल तो हमने निकाल ही दिए ना अपने पूरी पिक्चर में से। हमने वो खान लियाकत अली खान के बाद ये एक दो सिविलियन चेहरे दिखाए और फिर हम डायरेक्ट भुट्टो पे आ गए। बीच में आपने ये 20 साल,
नहीं नहीं मैं ये दिखाना ही नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहती हूँ कि दो पार्टियों ने आपस में कभी एक ने फौज से साजबाश कर ली, कभी दूसरी ने कर ली।
दिखाना चाहता हूँ मैं एक पार्टी को दिखाना चाहता हूँ कि 20 साल उन्होंने मुल्क तोड़ दिया। किसी ने उनसे पूछा भी आपने इन 20 सालों में दोनों ने क्या किया, और 20 साल तो उन दोनों के थे, वो उसमें से सिर्फ अयूब खान के 17 साल बनते हैं आर्मी चीफ के तौर पे, 17 ईयर्स। इस मुल्क में एक सिविलियन वजीर आजम को 17 साल दें, ना इसकी किस्मत बदल जाए तो मुझे आप आके पकड़ लीजिएगा अगर मैं जिंदा हुआ, ना जिंदा हुआ तो मेरी कब्र पे कत्वा लगा दीजिएगा कि तुम गलत कहते हो।
अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। नहीं मगर नहीं सर, फैक्ट्स की बात अगर करें,
अगली बात पे आ जाए, 71 के बाद आ जाए आप, 73 का आपने भुट्टो का शुरू किया ना, 73 से लेके 2008 तक कितने साल बने ये
2000, वही 40 साल तकरीबन बनते हैं,
27 और 35 साल ये बने। इस 35 साल में हमने 21 साल ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के तो यूं चुटकी बजा के गुजार दिए, वो क्यों, वाई 21 साल उन दोनों के दरमियान 10-10 साल, 10.5-10 साल दोनों को मिले, आप फिर 10.5-10 साल किसी एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को दे दें, फिर देखे इस मुल्क का नक्शा। आप किसी इस एक वजीर आजम ने पाकिस्तान की तारीख में, एक वजीर आजम मुझे नाम बता दें जिसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया हो, एक का नाम बता दें पिछले 76 साल।
अच्छा नहीं नहीं, मगर जब भी इनका भी अगर थोड़ा थोड़ा 3-3 साल का दुरानिया रहा तो कभी मोहतरमा पीपल्स पार्टी आर्मी के कदमों में जाके बैठ जाती थी तो वो उसको टॉपल करा देती थी, कभी मुस्लिम लीग नींद, बहरहाल छेड़ो परे, मेरा ख्याल हम
जैसे बहुत ये चाहते हैं कि फौज आए और फौज को हम प्रमोट करते रहते हैं, उसको खुशामद करते रहते हैं, वो समझते हैं कि ठीक है हमें ही आना चाहिए।
नहीं सर, अब अगर डॉलर देखे कम हो ही गया ना, 223 के ऊपर आ ही गया ना, 200-300 के अंदर आ गया आखिर डॉलर ने,
223 पे आ जाए, अल्लाह करे 223 पे आ जाए।
नहीं नहीं 300 के अंदर, ये कहाँ कनेडियन डॉलर की मैं बात कर रही हूँ, मगर अमेरिकन डॉलर भी अंदर आ गया है, काफी कंट्रोल हो गया है।
पहले भी आ सकता था और पहले भी आना चाहिए था, बस मैं इतना कहूंगा।
अच्छा मेरा सर, चलें छोड़े परे इस बात को, मेरा नहीं ख्याल हम इस चीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि मियां साहब वापस आ रहे हैं अक्टूबर 15 को, इज ही रियली कमिंग?
देखिए मैंने तो अक्टूबर 21 सुना है शायद।
अच्छा 21 अक्टूबर को आ रहे हैं।
अब नहीं देखे, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सिचुएशन यहाँ हर वक्त बदलती रहती है और जब तक वो बिल्कुल फाइनल नहीं हो जाता, तैयारियां तो हो रही हैं बहुत और उनके आने की भी बार बार कही जा रही है, लेकिन अब एक आज पिछले कुछ घंटों में फिर एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि कल नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साजिश के जो किरदार हैं असली, उनको कटहरे में लाया जाएगा। उसके बाद अचानक शहबाज शरीफ साहब वापस लंदन चले गए, वो आए थे एक दिन के लिए पाकिस्तान, दो दिन के लिए, फिर वापस चले गए, तो वहाँ फिर एक मीटिंग हो रही है, वो उस पर क्या तय पाता है, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम्स हैं बिहाइंड द सीन। मोहम्मद बिन सलमान ने भी पाकिस्तान के दौरे पे आना था, वो नहीं आए और फिर आना है अभी, उन्होंने कब आएंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारी इक्वेजन में। चाइना का एतमाद बहाल हुआ कि नहीं हुआ, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कतर है, यूएई है, तो ये सारे बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पे और अभी तक कुछ भी सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। तो अपेरेंटली देर आर 70-80% चांसेस के नवाज शरीफ विल कम बैक ईदर ऑन 21st और विद इन अक्टूबर ही विल बी बैक. तो लेकिन डेट्स आगे पीछे शायद कुछ हो जाए, परहैप्स मैं इस पे ये कहूंगा कि ये मेरा अंदाजा और एनालिसिस है, इन्फॉर्मेशन नहीं.
ठीक सर,
इन्फॉर्मेशन वही जो है कि इसको आना है तो आना है.
ठीक सर. सर ये एक जो न्यूज़ मेरी नज़र से गुजरी और कहा गया है और मैं इसको आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूएस एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम अपनी पूरी की पूरी डोनाल्ड ब्लूम एम्बेसडर जो है अपनी टीम अमेरिकन काउंसिल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिन, इकोनॉमिक ऑफिसर डगलस जॉनस्टन और सिक्योरिटी जो अताशी हैं उनके साथ पंजाब के आईजी पंजाब डॉक्टर अनवर से मिले हैं. ये क्या वजह हो गई कि अमेरिकन एम्बेसडर और उनके काउंसिल जनरल्स और ये तमाम के अताशी क्यों मुलाकात करनी पड़ी? क्या अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने के लिए डिक्टेशन देता है हमारे आईजीस को या हमारी अदलिया को या हमारे इलेक्शन कमीशन को? बिकॉज दे मेट टू इलेक्शन कमीशन एज वेल.
देखिए ये कोई राज तो नहीं है ना कि वो डिक्टेशन देते हैं. आईजी बेचारा क्या चीज़ है, डीजीआईएसआई जो है जनरल पाशा, साबिक डीजीआईएसआई जनरल पाशा, जब रेमंड डेविस का वाक़या हुआ तो वो कोर्ट में जिसमें वो दियत का मसला तय हुआ और फिर उसको रेमंड डेविस को रिहा किया गया जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में अंदर बैठे हुए थे और वहाँ से वो अपने फ़ोन पे मिनट बाय मिनट रिपोर्ट कर रहे थे यूएस एम्बेसडर को इस्लामाबाद में कि अब वो एक बंदे ने माफ़ कर दिया, अब दूसरे ने कर दिया, अब तीसरे ने कर दिया, अब रेमंड डेविस रिहा हो रहा है, अब मैं उसे लेके एयरपोर्ट जा रहा हूँ, अब मैंने उसे जहाज़ में बिठा दिया है, अब वो चला गया. इस तरह की रिपोर्टिंग साबिक डीजीआई से ये किताब में लिखा है, किताबों में लिखा गया ये. तो आईजी बेचारा क्या उस पर कर सकता है? और इस पर तो फॉरन ऑफिस से पूछा जाना चाहिए कि फॉरन ऑफिस ने परमिशन दी है तो क्यों दिया. हो सकता है कोई जॉइंट प्रोजेक्ट हो कोई सिक्योरिटी पे या पुलिस की ट्रेनिंग के, आई डोंट नो, मैं तो एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि उसमें इस तरह की चीज़ हो तो वो जनरली एम्बेसडर्स वगैरह मिलते हैं उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस देखने के लिए जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया हो या कोई ग्रांट दी हो. तो इसमें ऐसी कोई खबर मेरी नज़र से गुजरी नहीं है. तो बहरहाल ये कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है. लेकिन अगर आप फिर इसको कैनेडियन सोसाइटी से, कैनेडियन गवर्नेंस से कंपेयर करेंगी तो हम इसमें फेल होते हैं. और उसकी वजह वही है जो मैंने आपको बताया, हमने अभी प्राइमरी पास नहीं की और आप हमसे पीएचडी जैसे स्टैंडर्ड की तवक्कोआत कर रही हैं, तो वो ना करें. हमें प्राइमरी पास करने दें, हमें फिर मिडिल पास करने दें, फिर हमें मैट्रिक पास करने दें, फिर हम कहीं कॉलेज जाने के काबिल होंगे, फिर हमारे स्टैंडर्ड्स बेहतर होंगे.
बड़ी सीरियस बातचीत हो गई. अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे और अल्लाह ताला आपका भी हामी और नासिर रहे. ये मोहब्बतों के सिलसिले और ये गुफ्तगू के सिलसिले इसी तरह से जारी और सारी रहें. एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? अभी तो किसी ने कहा है कि भी पाकिस्तान में एक ही तबका अब अमीर है और वो जर्नलिस्ट का है और मतलब करोड़ों में इनकम है और पाकिस्तान इस तरह नहीं वे कि जर्नलिस्ट को एबॉलिश करे जो आने वाली गवर्नमेंट है.
जर्नलिस्ट को ना एबॉलिश करे, जो बैड प्रैक्टिसेस हैं उनको एबॉलिश करे फिर बेहतर है. और जहां तक जर्नलिस्ट अमीर तबका है ये स्टेटमेंट
सर बंद तो वो वक्त के फिरौन गए. मैं आपको इतना बताऊं, आप जर्नलिस्ट कैन ब्लैकमेल एनीबॉडी द वे दे आर, माय गॉड. और पाकिस्तान में तो
ये बात आपकी आपकी दुरुस्त है, मैं वही कहने लगा हूं.
मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी को डिवाइड करने वाले हैं ही
वो तो मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि ये टूल के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं. जो आपने ब्लैकमेलिंग की बात की है ना, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मीडिया में ये इंट्रूड कर चुकी है ये.
और आलम ये है कि वो एक शायर ने कहा ना कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा. एक जमाना था कि लोग अपनी इज्जत के लिए बहुत सारी चीजों को त्याग दिया करते थे, मगर आज तो वो हंस के कहते हैं कि ठीक है जी, वी विल डू इट.
अब पैसे के लिए हर चीज त्याग दी जाती है. और वो जो मिलियन सैलरीज की बात हुई है ना, उसमें मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ कि जर्नलिज्म मीडिया में भी एक इलीट है, वो एंकर्स की है और जो मीडिया एग्जेक्टिव्स है ना वो इलीट में है. उनकी तनख्वाहें वाकई बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आम स्टाफ की, आम रिपोर्टर्स की, कैमरामैन की, टेक्निकल स्टाफ की, इनकी सैलरियाँ कोई ज़्यादा नहीं है. बहुत बुरे हालात हैं इन लोगों के भी और इनको ना सैलरियां बढ़ती हैं इस महंगाई के दौर में, और इनको बल्कि सैलरीज मिलती नहीं कई कई महीने, इतनी यहाँ पे ये भयानक सूरत हाल
है। मगर नहीं सर, वो तो स्टाफ को नहीं मिलती ना, आपका जो जर्नलिस्ट है उसको तो पता है कि किसका कहाँ पे हमने ब्लैकमेल करना है।
नहीं, वो सारे नहीं, जो ब्लैकमेल नहीं करते, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हुई है, ये मैं आपको बता दूं। उन सबको, सब एक जैसे नहीं है, ये आप मेरे पे यकीन करें।
मैं सर आपसे 100% यकीन करती हूँ और आपका बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज दीजिएगा पीपल ऑफ पाकिस्तान।
बस मैसेज यही है कि आने वाले इलेक्शंस पुरअमन हो और फ्री एंड फेयर हो, और उसमें जो जमात कामयाब हो इस मुल्क को आगे लेके जाए, पीछे की तरफ ना लेके जाए, अच्छी सेहतमंद हेल्दी ट्रेडिशंस को वो इस्टेब्लिश करे, इंतकाम ना ले किसी से, और ऐसा मुल्क में माहौल पैदा करे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और जो लोकल इन्वेस्टर है उसका मोरल बूस्ट हो और उसका ट्रस्ट रिस्टोर हो और इसकी गवर्नेंस को बेहतर करो। वो तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान की जो नौजवान नस्ल है, जो 65% ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक, उनका फ़र्ज़ है कि वो घर से निकलें, वोट डालें और उस एक जमात को वोट डालें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो मेजॉरिटी में आए, और जो कोलिशन गवर्नमेंट बन के एक ब्लैकमेलिंग की सी सूरत हाल बन जाती है, फिर वो कोई जमात भी जो फेलियर है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन सक्सेस अपने नाम करवाना चाहती है, उससे हमारी जान छूटे और हमें पता हो कि इस जमात को पूरा मैंडेट मिला, 5 साल बाद जब हम उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करें और पता चले कि इसने काम पूरा नहीं किया, तो हम उसको वोट के जरिए निकाल दें और नई जमात को लेके आए। बस ये मैसेज है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जमात जाने से पहले कि हमसे चंदे गलतियां हो गई, वो भाई मुल्क को दाव पे लगा दिया, हमसे चंदे गलतियां हमसे भी हो गई और बस यही गलतियों की लैब में वक्त गुजार के
आइंदा ना करें, जो गलती करे रिपीट ना करें।
बहुत शुक्रिया जनाब अफसार अरब साहब का साथ शामिल होते हैं। आई एम नॉट सीरियस टुडे, प्रोबेबली वो कहते हैं ना, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे दुनिया में मुझे कहीं सुकून नजर नहीं आ रहा। और ज़ेलेंस्की ने ये कहा है कि वी आर एट द एज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। पढ़िएगा उनको यूनाइटेड नेशन में उन्होंने क्या कहा।
ऐसे ही
पाकिस्तान के बारे में बार बार, और कहते हैं बहुत, जब बहुत सफाइयां दी जाए ना तो उसके पीछे प्रॉब्लम हुआ करती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन को असला पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। कमाल है भैया, व्हाट डू यू वांट टू डू, उनके ऊपर मेड इन वॉर लिखा हुआ है। तो एनीवेज अल्लाह ताला मेरे मुल्क का हामी और नासिर रहे। मुझे दीजिए इजाजत साहब, अगर मुझे कोई गलती हुई तो सर मुझे माफ कर दीजिए।
नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप भी मुझे माफ कर।
आई मीन इट, क्योंकि कहीं अगर अभी इजाजत दीजिएगा। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। स्टे ट्यून्ड, खबरें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाजिया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाजिया रहमान, 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्यूटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कनेडियन इमिग्रेशन के लॉज और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। khairimsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
Grill in the Hut, Mrs. Saga में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। Grill in the Hut।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 Kothra Road, Mississauga.
خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی ضمن، فلنگز، گراؤنڈز، بریجز، کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466.
خوشخبری خوشخبری خوشخبری، برامپٹن کے بعد گرل اینڈ چک کی دوسری لوکیشن کھل چکی ہے آپ کے شہر مسساگا میں، 3525 پلاٹینم ڈرائیو، یونٹ 105، مسساگا. Delicious and healthy grill and rotisserie chicken, sandwiches, burgers, wings, skewers, popcorn chicken, salad, garlic bread and sweet dishes. Grill and Chick, Mississauga, 905-606-2345. Visit at grillandchick.com.
گاڑی گھر یا کمرشل، جیسا کہ بزنس، ٹرکس، ڈیلیوری وہیکلز، کارگو وینز، ورک شاپس، گروسری سٹورز، ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا. وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار، گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں، مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے. یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس، موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم، 4163022522، 302-2522.
جی سامعین ناظرین، ویلکم بیک اگین. اینڈ سب 5:31:17 ہماری گھڑی میں ہو چکے ہیں. 5:45 ایگزیکٹلی 5:45 پہ ہماری نیوز شروع ہو جائے گی. شاہد جی آئیں یا نہ آئیں، ہم شروع کر دیں گے. جی ہم ساری نیوزیں آپ کے لیے شروع کر دیں گے. فی الحال چلیے آپ کو ایک خوبصورت گیت کی طرف لے چلتا ہوں میں. سائر علی بگا کی آواز میں یہ گیت ہے. پہلے گیت سماپ فرمائیے، اس کے فوراً بعد پروگرام میں واپس آئیں گے. 4166201778 ہمارا فون نمبر ہے.
مل کے ملنا چھوڑ دینا، دل نہ دے یہ اجازت، دل لگا کے توڑ دینا، ہے یہ کیسی محبت. مل کے ملنا چھوڑ دینا، دل نہ دے یہ اجازت، دل لگانا توڑ دینا، ہے یہ کیسی محبت. کیوں ہے ڈوبے پہنچ کنارے، اے دل تو بتا، اب جیے ہم کس کے سہارے، اے دل تو بتا. ہم نے عبادت دل سے کی تھی، جس نے چاہا دل کو چھوڑا، درد محبت کچھ تو بتا کیا نام. ہم نے عبادت دل سے کی تھی، جس نے چاہا دل کو چھوڑا، درد محبت کچھ تو بتا کیا نام. ستائے غم میں آ کے اب نہ سو سکے، ہم نہ تم میں پیار والی باتیں اب نہ ہو سکے. جب ہوئے جدا تھے ہم تو سب خدائی تھے، بے وفائی کرنے والے نے وفا بھی دیکھ لی. کیوں ہے ڈوبے پہنچ کنارے، اب جیے ہم کس کے سہارے، دل تو بتا. ہم نے عبادت دل سے کی تھی، جس نے چاہا دل کو توڑا،
होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है, क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेक एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
रियल एस्टेट दी दुनिया विच थोड़ी कामयाबी एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी जिथे तुसी 1.5 लाख तो 2 लाख साल दा कमा सकदे हो। इस तो अलावा फ्री बायर एंड सेलर लीड्स, वीआईपी एक्सेस टू प्री कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, वन ऑन वन सेल्स एंड मार्केटिंग मेंटरशिप, टीच एंड ट्रेन प्रोग्राम, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न ऑफिस विद प्राइवेट रूम, इन हाउस मॉर्गेज एंड लॉयर्स टीम, इन हाउस प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। फिर देर का दी आओ ते ज्वाइन करो एग्जीक्यूटिव होम्स रियल्टी या कॉल करो 905-890-1300 या विजिट करो ehrb.ca।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਵੀਂ SUV ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 2023 ਦੀ ਫੋਰਡ ਐਸਕੇਪ ਜੋ ਕਿ ਗੈਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਔਰ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 13 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1.99% ਦਾ APR ਪਰਚੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿਲੈਕਟ 2023 ਐਸਕੇਪ ਮਾਡਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੋਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ।
A child's smile can make a big difference when it comes to their health. If you have kids under 12, earn less than $90,000 a year and do not have private dental insurance, you may be eligible for the new Canada Dental Benefit. You could get a direct payment of up to $650 per child for dental care. Now that's something to smile about. To learn more, visit canada.ca/dental. A message from the Government of Canada.
Brampton on stage 12 se 18 October tak da roz Brampton par Ahad Razanir ko Hamlet ke kirdar mein dekh kar khush aur welcome karte hain. Hamlet jo aajkal ke daur ke liye gazabnak, tez raftaar, intiqam aur daagdar mohabbat ki kahani hai. Kya aap hamare Denmark ke shahzade ke sath baizzat khushhali pagalpan ke darmiyan line par chalne ki himmat karte hain? Ye tabdili sirf sachcha saniya hi la sakta hai. Dekhna mat bhuliyega Hamlet 12 se 18 October tak da roz Brampton mein. सेल टिकट्स खरीदने के लिए विजिट करें brampton.onstage.ca।
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
क्या आपके पास आइडियाज या तजावीज हैं कि आप एक नई बैरूनी तफरी जगह में क्या देखना चाहते हैं? सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपके ख्यालात का इजहार करने के लिए सितंबर 23 सैटरडे सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक फ्रेमली लिमिटेड कम्युनिटी पार्क में इनवाइट करता है। ये खुद वहाँ ऑन साइट मौजूद होंगे, आवाम से उनके ख्यालात तजावीज हासिल करेंगे कि ये जगह कैसी नजर आ सकती है। ये एक फ्री इवेंट है, सबके लिए खाने पीने तफरी सरगर्मियाँ मौजूद होंगी। मजीद जानने के लिए brampton.ca/engage पर विजिट करें।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
समय नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:40 और 17 सेकेंड हमारी घड़ी में हो चुके हैं और स्टिल ब्यूटिफुल गॉर्जियस 18 डिग्रीज टेम्परेचर. भाई इट डजंट फील लाइक 18, फील्स लाइक 20-27. वाह, बट एंजॉय व्हाइल यू कैन. इस हफ्ता है और मे बी नेक्स्ट वीक, और उसके बाद फिर हम रजाइयाँ ओढ़ के घर से निकला करेंगे और सारे कपड़े शपड़े सब अंदर रख दो भाई. इससे बड़े जब जैकेट पहन लेते हैं तो फिर कपड़े कौन देखता है. एनी वे दैट्स अ गुड न्यूज. वॉज इज अ गुड न्यूज, गुड न्यूज. चलिए साहब लिए चलते हैं आपको हम वन एंड ओनली लोनली लोनली शाजिया मलिक की जाने. क्या करेंगी वो, आपको दुनिया की सैर कराएंगी, आपने टिकट भी नहीं लेना, बस ऐसी सैर कराती रहेंगी आपको. उनकी बातों का यकीन मत कीजिएगा, मगर फिर भी शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे हो? आप आए नहीं हो कल, आपने मतलब है मेरी जगह आपने छुट्टी कर ली है, अब आपने वो सारी चीजें सीख ली है मेरे से.
मैंने कहा यार
महीने की एक छुट्टी.
हाँ नहीं अगर आप एक कर ली तो मैं 3-4 करूंगा.
अच्छा मेरी आपको एग्जाम्पल नहीं फॉलो करना है.
मैं देख रहा हूँ, मैं आमिर को स्पेशल रिपोर्टिंग के लिए रखा हुआ.
अच्छा वो इसीलिए मेरी जासूसी करता रहता है.
आमिर बताए मुझे कि भाई कब दिन आपने किस दिन छुट्टी करनी है और उस दिन अगर आपने छुट्टी कर ली तो उसके 3 दिन उसके बाद 3 दिन मैं आपको नजर नहीं आऊंगा.
अच्छा 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 चलो ठीक है मोहित भाई, कोई बात नहीं है. पाकिस्तान में तो अब अगर कोई महबूब या उसका कोई प्यारा या कोई जाने वाला होता है ना तो वो उसको इजाजत दे देता, कहते हैं हाँ हाँ जिधर तुमने जाना जाओ, क्यों क्योंकि जितना एक्सपेंसिव पेट्रोल हो गया है 2 किलोमीटर के बाद तुमने खुद ही वापस आ जाना है.
देख लो
मजिद भाई,
दे आर सो स्मार्ट,
स्मार्ट स्मार्ट
ब्रिलियंट पीपल.
हाँ वो कहते हैं जाओ अगर नाराज होकर जा रहे हो घर से जाओ, कोई बात नहीं है.
मैंने गैस नहीं भरी,
गैस नहीं भरी गाड़ी में. 2 किलोमीटर के बाद आपको फिर वापस लौटना पड़ेगा. हो बिल्कुल देख ले मजिद भाई, कितनी स्मार्ट कौम है.
मैं कहता हूँ कि हमारे
और हमारे दोस्त अफसार साहब इतनी गलियां देखे पाकिस्तानी कौम को गए. व्हाट इज दिस,
कम ऑन,
व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. अब सर क्या करते हो यार तुम?
ना ना ऐसा नहीं करना चाहिए.
आहो आहो
चाहिए.
पाकिस्तानी तो बड़े पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, जो हमारे ऊपर बैठे हैं पाकिस्तानी उनका कुछ पता नहीं है.
पाकिस्तानी
आम पाकिस्तानी बहुत अच्छा है.
केले सेब का पता नहीं है मुझे, आम सेब
आम जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो 770 के ऊपर वाले हिस्से में बैठे हैं पाकिस्तानी उनका पता नहीं है कैसे. अपनी तारीफें वो खुद करते रहते हैं, खूबसूरत आदमी, मासूम आदमी हैं जी.
हाँ जी हाँ जी
हाँ ऐसे है. अच्छा जनाब चलो जी, आज ये कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आज एक बहुत जबरदस्त स्पेशल रिपोर्ट है जो स्यापे अब फड़ गए हैं कनेडा और इंडिया के बीच में, उससे रिलेटेड अब बहुत सारी स्टोरियां जो है वो निकल रही हैं, तो हम जो है आपको अब ये स्टोरियां सुनाते रहेंगे. लेकिन आज की जो स्पेशल रिपोर्ट है दैट इज जरा हटके. आपको पता ना हम तो जरा काम करते हैं हटके, ठीक है जी. क्योंकि हम भी हैं हटके तो हम ऐसे करते हैं. और मेरा भाई कहता है नहीं तुम हटके नहीं हो, हटी हुई हो. यानी कि तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हटा हुआ
है, हिल गई हो,
हिल गई हो, दिमाग हट गया तुम्हारा, ठीक है जी. ऐसे है, लेकिन वो भाई है दिल जलाया, क्या किया जाए, उस पर बड़े जुल्म मैंने किए थे वैसे छोटे जब था ना, बहुत मार गई उसने मेरे से. तो ऐसे अच्छा जी नानन कबाब के बारे में हम आपको बेशक बताते हैं. बड़े जबरदस्त यहाँ पे खाने हैं, खासतौर पे इनके जो ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं बहुत ही जबरदस्त हैं. अब नई इन्होंने लोकेशन खोली है, अगर आपको जाना है तो ना सिर्फ ये कि खाने में का एंजॉय का मजा लेना है बल्कि उनकी जो जगह है उसका भी एंजॉय का मजा लेना है, तो आप जाएं 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस सागा में, और इनका नंबर है 4162858191 अगर आपको ऑर्डर डालना है जाने से पहले. राजा पाशा जी अगर वो कहते हैं जी आपके पास 2 गाड़ियां और 1 घर है, अब ये नहीं मुझे पता कि अगर 2 घर और 1 गाड़ी है तो फिर उसका क्या रेट देंगे, लेकिन अगर 2 गाड़ियां और 1 घर है तो आप $1,775 तक बचा सकते हैं. जो ऑल स्टेट की एजेक्स एजेंसी है वहां पे होते हैं. अगर आपको इनके और भी सर्विसेज चाहिए तो आप इनसे संपर्क करें ऑन 6@647290 3773. इसके अलावा जनाब अगर आपको मोटे पैसे कमाने हैं, पितले से नहीं मोटे, अगर मोटे पैसे कमाने हैं आपको तो आप एग्जीक्यूटिव होम रियल्टी जो है उनकी एक्सक्यूज मी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं. हैं जी देखें मुझे खांसी इसीलिए आई है कि ये एड मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि गरीबों ये एड तुम्हारे बोलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी देखें हम कितनी जरूरत करके बोल रहे हैं। तो आप ज्वाइन कर लें इनको, एग्जीक्यूटिव होम रियल्टी वालों को, ये आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे, यानी बायर एंड सेलर लीड्स देंगे। तो आप इनसे जो है संपर्क कीजिए, मतीन साहब को फोन कीजिए 6478856650। और जो है सबसे बड़ा हलाल,
इसके साथ हलाल हलाल, हेलो मिसेस सागा, हेलो मिसेस सागा, टोरंटो एंड की फेवरेट चिकन एंड वॉफल्स, पर एक ही जगह मिलती है चिकन एंड वॉफल्स आपको, और वो है क्लक क्लक्स में। क्लक क्लक्स जो है अब नई लोकेशन खोली है उन्होंने, 70 वर्ल्ड ड्राइव। आप पूछेंगे वर्ल्ड ड्राइव किधर है, भाई बड़ा वेरी इजी, अगर आप हियर ओंटारियो पे नॉर्थ पे जा रहे हो 401 को जैसे ही क्रॉस करेंगे आप, तो आपको पहली स्ट्रीट नजर आएगी वर्ल्ड ड्राइव की, राइट हैंड साइड पे देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है क्लक क्लक्स, अब खोल दिया गया है यहाँ पर। यहाँ पर जो है मदर क्लकर है इनके पास, क्लक ये है, होली क्लक है, टोवाको है, बहुत सारी चीजें इनके पास है, पूरा मेन्यू है, मगर इनके वाफल्स वाफल्स प्लस चिकन के सैंडविच जो है वो एक्सेलेंट। 2895620030 इनका फोन नंबर है, क्लक क्लक्स। नेक्स्ट टू वायरलेस की बात कर चलो, नेक्स्ट टू वायरलेस साहब यहां पर सैमसंग के डुअल सिम ब्रांड न्यू टेलीफोन स्टार्टिंग एट $120, ब्रांडेड टैबलेट्स विथ कॉलिंग फीचर्स है $120 से स्टार्ट, ये भी होते हैं, डैश कैम है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स है, इसके साथ साथ अर्जेंट फोन रिपेयर, लैपटॉप एंड GPS, buy and sell trade cell phones, computers repairs, unlocking all kind of phones. Next to wireless, 7171 Gorway Drive in Mississauga, 6472720020 inka phone number hai ji.
हाँ जी, तो मजद भाई सबसे पहली तो हमारी रिपोर्ट जो अभी कलीद रशीद साहब ने रिजाइन कर दिया है अपनी पोजीशन से और उसके बारे में सारी है। असल में हुआ यह है कि तीन जो वेन लास वेगास होटल के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जो रिकॉर्ड्स पेश किए हैं वो कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं कलीद रशीद साहब की जो स्टोरी है जो कि उन्होंने इंटेग्रिटी कमिश्नर को दी थी अबाउट अ मीटिंग इन जो कि उनकी होटल लॉबी में हुई थी उस डेवलपर के साथ, कि जिसकी लैंड जो है अब ग्रीन बेल्ट ये जो सारा कंट्रोवर्सी चला था उसमें से रिमूव कर दी गई है। उन तीनों का होटल एम्प्लॉयज का कहना है कि ये दोनों जो थे, ये जो एक्स एड एक था फॉर्मर एड था प्रीमियर फोर्ड का और मिनिस्टर साहब जो थे उनको जो है गुड लक रिचुअल मैसेजेस मिले थे। पर शाकिर रहमतुल्ला जो है उसको ये मैसेज मिला था जब वो स्पा के अंदर था एट एनकोर 4 PM पे 1 February 2020 को। होटल जो है वो कहता है जी कि ये बड़े यहां पे मजे कर रहे थे और इनको जैस वक्त मैसेजेस मिले हैं और ये वो कहते हैं जी कि सारा ये किस्सा उस वक्त खुला है जब इंटेग्रिटी कमिश्नर डेविड वेक ने कलीद रशीद साहब से कहा कि आप बताएं कि आप इस सारे जमाने में कहां पे थे, तो ताकि पता चल सके कि किसने रहमतुल्ला को टिप ऑफ किया था ये ग्रीन बेल्ट की लैंड के बारे में कि ये अप फॉर ग्रैब्स है। एनडीपी के जो लीडर है मैरिट स्टाइल्स उन्होंने कहा है कि बड़े ये मेजर डिफरेंसेज है दोनों अकाउंट्स में जो हुए हैं, तो इसके अंदर जो है देखना जरूरी है और उन्होंने कलीद रशीद साहब को कहा कि अगर आपको कोई भी डिटेल्स पता है तो यू शुड कम क्लीन और ये आपको बताने की जरूरत है। कलीद रशीद के जो स्पोक्स पर्सन है डग एलनगैम उन्होंने कहा है कि जो कलीद रशीद साहब थे वो लास वेगास में ट्रेवल करना चाहते थे December 2019 में, लेकिन फिर इसको रीस्केड्यूल किया गया था अर्ली 2020 में और उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा हुआ है क्योंकि हमने गलती से इंटेग्रिटी कमिश्नर को वो वाला स्केड्यूल और आइटनरी दे दी जो ओरिजिनली था December 2019 ट्रिप का। इंटेग्रिटी कमिश्नर ने जब कलीद रशीद से पूछा कि फिर आप वो सारे प्रूफ्स के आप होटल में कब गए और कब ठहरे और क्या पेमेंट्स की उनकी आप डिटेल्स बताएं, उसको रिसीव करने में कलीद रशीद के ऑफिस को बड़ी देर लग गई। बहरहाल जी ये जो सारी अब डिटेल्स थी जो कि हुआ था January 30th से February 1 के बीच में जो रीबुकिंग्स और सारा कुछ किया था, इस सब का होटल से जब पेमेंट्स की और सारी डिटेल्स मांगी जो कि कलीद रशीद साहब ने अपने क्रेडिट कार्ड से की थी और ये शो करता था कि वो वहां पे रहे थे, वो इनको देर से मिला। बहरहाल जब उनको मिला तो ये डग एलनगैम कहते हैं कि हमने जब मीडिया ने हमको कॉन्टेक्ट किया तो हमने उनको बिल्कुल बता दिया है कि हमने ये सारी इन्वॉइसेस प्रूफ ऑफ पेमेंट जो है अब नए वाले जो थे वो इंटेग्रिटी कमिश्नर को दिए हैं। रहमतुल्लाह साहब जो है उनको जब मीडिया ने कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने तो रिस्पॉन्ड नहीं दिया, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बड़ा दोस्त हूं डग फोर्ड साहब का और मेरा तो बड़े अरसे से प्लान था ये ग्रीन बेल्ट का, और उससे भी पहले जब ये बेचना चाहते थे उससे पहले भी, क्योंकि मैं अपनी एक लैंड को स्वॉप करना चाहता था इसके साथ। मसूदी साहब जो है उन्होंने तो बिल्कुल मीडिया को रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन आपको पता ही है कि ये जो ग्रीन बेल्ट का क्राइसिस चल रहा है जिसमें कि कहा जाता है कि इन डेवलपर्स ने $8.3 billion के जो है फायदे अलेजली वो उठा सकते हैं, तो उस सिलसिले में ये सारी प्रोब जो थी बिठाई गई थी, और उसी में कलीद रशीद साहब को, अमीन मसूदी को और शाकिर रहमतुल्ला जो है इनके साथ बात की जा रही थी। तो बहरहाल आपको पता ही है कि जो कि हाउसिंग मिनिस्टर थे उस वक्त के ऑन्टेरियो के स्टीव क्लार्क, उन्होंने भी फिर रिजाइन उनको भी करना पड़ा, और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे रायन अमेटो। तो अब ये जो है तीसरे बंदे हैं डकफोर्ड साहब के साथ जो थे एसोसिएटेड एमपीपी कलीद रशीद, इन्होंने जनाब रिजाइन किया है अमिड ऑल दिस कॉन्स्पिरेसी। तो ये है जनाब सारी स्टोरी। अच्छा जी, जो ये यूनिफर की एक चल रही थी एक स्ट्राइक, क्योंकि वैसे तो ये चल रही थी वहां पे अमेरिका में, लेकिन लग रहा था कि जैसे यहां पे भी उसका जो है बहुत असर आने वाला है, तो ये फोर्ड मोटर कंपनी के ऊपर जो है ये चल रही थी, और ये स्ट्राइक जो है अब शायद नहीं होएगी क्योंकि अब फोर्ड मोटर कंपनी के साथ इनकी जो है कोई बातचीत हो गई है, और जनरल मोटर और स्टेलेंटिस के ये जो प्लांट्स हैं ये शायद बचाए जा सकेंगे, क्योंकि जो वर्कर्स हैं इनको ये जो एक ओरिजिनल प्रपोजल है ये भेजा गया है। इसके अंदर वर्कर्स ने कहा था कि हमारी 40% वेजेस जो है उनको भी इंक्रीज किया जाए, और हमें पेंशन्स की तरफ लेके जाया जाए, और जॉब सिक्योरिटी दिए जाए। आपको पता ही है कि इनके बहुत बड़े जो हैं वो ऑपरेशंस इधर कनाडा में भी हैं, तो लग रहा था कि जैसे यहां पे भी उसका असर आएगा, लेकिन अब जो है चूंकि ये टेंटेटिव निगोसिएशंस हो गई हैं तो अब चीजें मेरे ख्याल में जो है वो सिक्योरिटी की तरफ जाएंगी। ऑन्टेरियो की रियल एस्टेट एसोसिएशन जो है ओरिया, उसने कहा है कि बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो बेचारे अब घर नहीं खरीद सक रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर स्टूडेंट डेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ये एक पोल कंडक्ट किया था एबकस डेटा वालों ने, जिसमें कहा था कि पोस्ट सेकेंडरी ग्रेजुएट्स जो हैं वो अभी भी अपना जो उन्होंने लोन लिया उसको पे करने की सोचते रहते हैं, और करंटली हर कोई जो अगर एवरेज लगाई जाए तो 14,500 तक लोन्स जो है वो ओ करता है, और ये जो डेट्स हैं ये 5,000 से ऊपर जब जब आते रहते हैं इनके, तो तब उनके लिए होम के लिए सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 42% जो है उन्होंने ये कहा इस सर्वे में जो आज ओरिया ने जिसकी के डिटेल्स दी हैं कि वो ऑन्टेरियो से कहते हैं कि हम बाहर जाएंगे ताकि लो कॉस्ट लिविंग और अफोर्डेबल हाउसिंग जो है हमारी बन सके, लेकिन उन्हीं बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि हम अपने जो फैमिली होम्स हैं वो अगले एटलीस्ट 10 साल तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक तो घरों की कमी है, फिर कीमतें भी ज्यादा हैं, तो हो सकता है ये घर छोड़ें तो उनको दूसरा ना मिले। 75% जो थे वो ये कहते थे कि वो अपना जो ओन है करना चाहते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। 80% ने कहा कि हम जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन हैं वो हम चाहते हैं कि और ज्यादा स्ट्रांग हुए ताकि हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाया जा सके। ओरिया जो है उसने भी बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसे स्टूडेंट लोन को कम किया जा सकता है और कैसे एडजस्टमेंट्स लाए जा सकते हैं कनाडा के फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट प्रोग्राम के अंदर, जिसकी की वजह से ये चीजें लोग खरीद सकते हैं। अच्छा जनाब, ये जो नागार्नो काराबाख का जो एरिया है यहां पे बहुत दिनों से जो है लड़ाई चल रही थी, और इस लड़ाई में अब अभी तक खबर आई है कि 200 के करीब जो लोग हैं उनकी डेथ्स हो चुकी हैं। थाउजेंड्स ऑफ आर्मेनियंस जो हैं वो अब एयरपोर्ट के ऊपर जमा हुए हुए थे उसके पास वहां पे जहां पे के रशियन पीस मेकर्स जो हैं उन्होंने बेस बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं ये अब उनके साथ सीज फायर करने को तैयार हो गई हैं, और उन्होंने कहा है कि वो आज़रबाईजान के सामने सरेंडर करेंगे। सेपरेटिस्ट जो हैं वो अपना एक सेल्फ स्टाइल्ड रिपब्लिक ऑफ आर्कसैक चलाना चाहते थे, और 12,000 के करीब जो लोग थे उनको कह रहे थे कि आप रश ना करें एयरपोर्ट्स पे, जिसका के नाम उन्होंने जो कि कैपिटल में है, और कैपिटल का नाम इन्होंने स्टीपनैकर्ट रख दिया है, और इन्होंने एक्यूज किया अज़रबैजान को कि तुम ये जो काराबाख का एरिया है इनको ये जो लोग हैं उनसे यानी उनको मारना चाहते हो, उनको खत्म करना वहां पे चाहते हो। अज़रबैजान का जो कैपिटल है उसके अंदर जो है काफी इसके ऊपर जो है जाहिर है कि बाकू के अंदर कंसर्न शो किया जा रहा था, और सारी दुनिया भी बाकू की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। अब उन्होंने कहा है जी कि यहां पे जो एथनिक आर्मेनियन सिविलियंस हैं उनको सारा हमने अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दिए हैं. आपको पता ही है कि आर्मेनियंस जो हैं क्रिश्चियंस हैं और अजरबैजान जो है मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो कहते हैं जी हमने कोई क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में वो नहीं रखे हुए डिस्टिंक्शन. आर्मेनियंस जो हैं वो भी यहाँ पे सेंचुरीज से रह रहे हैं, वो कहते हैं जी सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट से एटलीस्ट हम यहाँ पे रह रहे हैं. अजरबैजान के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं जी कि इस टेरिटरी पे हम भी बड़े अरसे से रह रहे हैं. तो वो एक्यूज करते हैं कि आर्मेनियंस जो हैं वो अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. आर्मेनियंस कहते हैं कि अजरबैजान के कुछ लोग जो हैं इधर कारबाख में प्रॉब्लम्स करते हैं. बहरहाल जी अब ये दोनों जो पार्टीज हैं ये मिलके बैठ गई हैं और मॉस्को ने कहा कि 2,261 पीपल इंक्लूडिंग 1,049 किड्स जो हैं उनको हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स है वो शेल्टर दे रही है और सीज फायर हो गया. लेकिन अगर आप सोचें कि अगर रशिया कहते हैं हमने बड़ा मेन रोल प्ले किया सीज फायर में, कि ये सीज फायर ना होता तो ये एक और दुनिया में जो है वॉर का कटा खुला होता यहाँ पे. तो और बिल्कुल सेम प्रॉक्सिमिटी, कोई इतना दूर भी नहीं है ये वहां से जहां से कि यूक्रेन है. तो ये चीजें जो है सेटल हुई हैं. आपको पता है कि आज जो है वैसे तो 78 जो यूएनजीए की मीटिंग है वो स्टार्ट हुई हुई है, लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी बाइडन साहब की और नेतन्याहू साहब के बीच में. तो प्रोटेस्टर्स जो थे आज यूएस एम्बेसी तल अवीव ब्रांच जो है वो और यूएस जो काउंसलेट है इन जेरूसलम उसके बाहर जो है बहुत ज्यादा आज प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि वो बाइडन साहब को प्रेशराइज करना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को कहें कि ये जो जुडिशरी के ऊपर ही जो ओवरऑल कर रहे हैं ये दे ही इज वर्किंग अगेंस्ट द जुडिशरी और उसकी इंडिपेंडेंस के खिलाफ. व्हाइट हाउस में आपको पता ही है कि नेतन्याहू साहब जो है बड़े अरसे से एज प्राइम मिनिस्टर जो थे वो सर्व कर रहे थे, फिर उन्होंने बीच में लूज किया, फिर वो जीत के आ गए. तो काफी फ्रीक्वेंटली वो विजिट करते थे, लेकिन जब से बाइडन साहब आए हैं इनको यहां पर इन्विटेशन नहीं मिला है. हालांकि ये बड़ा कस्टमरी है कि जैसे ही कोई नया प्रेसिडेंट अमरीका का आता है तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को फॉरन वो बुलाता है. लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा था जी कि अब ये दोनों लीडर्स जो है यूएनजीए में मिलेंगे, क्योंकि यूएस जो है बेतहाशा जो है वो डिसप्लीज्ड है विद द डिसीजंस ऑफ नेतन्याहू गवर्नमेंट. तो वो कहते हैं जी कि बाइडन साहब ने उनके साथ अभी जो मीटिंग की है उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात की है और उनको कहा है कि भाई आपको अपना ये जो कोर्ट सिस्टम में आप जो चेंजेस ला रहे हैं इनको आप देखें कि आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज ना इसमें अंडरमाइन हो, अपहोल्ड करें आप उसको. और वैसे भी जो बाइडन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी अनहैप्पी है द वे दे आर डीलिंग विद द पैलेस्टीनियंस, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपको पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को गार्ड करना पड़ेगा. नेतन्याहू साहब ने उनसे बात करते हुए बाइडन साहब से कहा है कि नहीं हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे जो है वो यकीन रखते हैं और उसको अब हम अपहोल्ड करेंगे. लेकिन आपको पता ही है कि पैलेस्टाइन में कितनी ज्यादा जो है वो इन्होंने अपनी फोर्सेस जो है बढ़ा दी हैं और हर वक्त किसी ना किसी पैलेस्टीनियन को इजरायलीज मारते हैं. इसराइल का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि वो सऊदी अरेबिया के साथ अपने टाइज नॉर्मल करे. बाइडन साहब जो है वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया के साथ इसराइल की दोस्ती करानी है तो सऊदी अरेबिया की जो है वो शर्तें माननी पड़ेंगी. और सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियरली कहा है कि जिस वक्त तक पैलेस्टीनियन स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट नहीं होएगा ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होएगा, हम इसराइल के साथ दोस्ती नहीं बनाएंगे और उसको कोई कंसेशंस नहीं देंगे. लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू के जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो भी पैलेस्टीनियंस को कोई कंसेशन देने को तैयार नहीं है. तो अब ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं बाइडन साहब के ये जो है इसराइल मान जाए, ताकि ना सिर्फ ये कि यहां पर रीजन के अंदर पीस लाया जाए बल्कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डील है उसको भी आगे लेके जाया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अलेजली इनको अपेरेंटली उनको कहा है कि शायद वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनसे आर्म्स ले सकते हैं. आपको पता ही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट खुद बाइडन साहब जब इलेक्शन ट्रेल पे थे बहुत खिलाफ थे इस चीज के सऊदी अरेबिया को आर्म्स दिए जाएं, लेकिन अब जब बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होए तो फिर तो आपको पता ही है कि हर कोई चाहता है कि वो सऊदी जो और अरब जो पेट्रो मनी है वो हमारे पास आनी चाहिए. तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जनाब उनका तो आज तो क्या मजे की आज वो रही बात सारी ट्विटर के ऊपर, जिसको अब एक्स कहते हैं, उसके ऊपर सारा वक्त लोग हैरान होते रहे और बेशुमार मैसेजेस आए. उनका जो था अकाउंट एक्स वो हैक हो गया और उसके ऊपर पहली पोस्ट आई कि जी मैं बड़ा सैड हूं ये अनाउंस करते हुए कि मेरे वालिद साहब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी वफात हो गई है और अब मैं 2024 में मैं प्रेसिडेंट के लिए रन कर रहा हूं. अच्छा जी, अब जब ये सारी बातें फैलने लगी तो इतनी ये फैल गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब जो हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस ट्रंप साहब वो सामने आए और उनका जो सोशल मीडिया पोर्टल है ट्रूथ सोशल उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि नहीं मैं बिल्कुल जिंदा हूं और बिल्कुल मैं ठीक हूं. ये जो इनके ट्रंप जूनियर के जो स्पोक्स पर्सन थे फिर एंड्रयू सुराबियन, उन्होंने कहा जी कि नहीं डॉन का अकाउंट जो है वो हैक हो गया था तो इसलिए ये सारी ट्वीट्स जो थी वो हैक थी. तो अब ये सारी की सारी ट्वीट्स जो हैं इनको डिलीट कर दिया गया है. तो ये जनाब आज काफी जो है इंटरेस्टिंग
गेमा गेमी रही
एक्स के ऊपर। हाँ जी, अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय ऑन्टारियोस लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे, और ये हलाल बफे है, काम आप जितने मर्जी हराम करें, खाना आपने हलाल खाना है, ठीक है जी। और अब जो है ये आपके पास आते जा रहे हैं, जहां जहां आप जा रहे हैं पाकिस्तानियों, और आपके पास आ रहे हैं। पहले ये इधर मिसेस सागा में थे, अब इन्होंने नया अपना ये रेस्टोरेंट खोला है ओकविल के अंदर, 2294 लेक शोर रोड वेस्ट पे। और अगर आपको यहां पे बैठ के भी खाना खाना है या आपको ऑर्डर भी करना है तो आप इनको कॉल कर सकते हैं एट 905